नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वे बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए मूल्य की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 2 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में गंगा नदी पर औंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 4 लेन के बख्तियारपुर मोकामा खंड का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बक्सर ताप बिजली संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी मुंगेर में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत विनिर्मित अवजल उपचार संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आज शाम कोलकाता में नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। वे जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमान बंदर स्टेशन तक स्वयं मेट्रो से यात्रा करेंगे। इसके बाद वे कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित भी करेंगे। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राह पर अग्रसर है, इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग राज्य में इस बार भाजपा सरकार बनाना चाहते हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर गुजरते दिन के साथ राज्य में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी और वित्त मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर आनंदन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्यवेक्षक होंगे। चुनाव 9 सितंबर को होना है। पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव कराना आवश्यक हो गया था। देश में ये 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र भी संपन्न हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान 14 विधेयक पेश हुए और कुल 12 विधेयक पारित किए गए। श्री बिरला ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए व्यवधान के कारण समय की बर्बादी पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उधर राज्यसभा में भी उपसभापति हरिवंश ने मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा उत्पन्न व्यवधानों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद का मॉनसून सत्र देश और सरकार के लिए बेहद सफल रहा।
देश के लिए और सरकार की दृष्टि से ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपी विशेष करके जो नए एमपी हैं, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया, इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम एलोटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया।
रेलवे त्योहारों के अवसर पर श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुगमता के लिए 380 गणपति विशेष यात्री रेलगाड़ियां चलाएगा। गणपति पूजा 27 अगस्त से 6 सितंबर तक होगी। त्योहारों की संभावित भीड़ को देखते हुए गणपति विशेष रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी और त्योहारों के निकट आने के साथ ही इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होगी। कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कल रुद्राक्ष पाटिल, अर्जुन बाबूता और किरण जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं जूनियर वर्ग में मानसी रघुवंशी ने महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि यशस्वी राठौर ने रजत पदक हासिल किया। प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल का फाइनल कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच होगा। ये मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक युवा भारती मैदान पर खेला जाएगा। डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब ने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने उत्तरी गुजरात क्षेत्र में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।